और सभी अपना अपना चिंतन करेंगे, मुझे किस किस कारण से व्यर्थ संकल्प चलते हैं। कुछ जनरल हैं, कुछ व्यक्तिगत होते हैं उनके, उसको हमें धीरे धीरे कम करना है। सब जानते हैं ये संभव नहीं है कि बाबा कहे आज से व्यर्थ संकल्प नहीं करना और हम कहें हाँ बाबा, सब जानते हैं ना। ऋषि सन्यासियों को भी हजारों हजारों साल लग गए एकाग्रता के लिए, मुक्त नहीं हुए। हमारे यहाँ ज्ञान सरोवर में एक सन्यासी आया था कुछ साल पहले, उसने यह अनुभव सुनाया। उसने कहा कि मुझे 6 मास यहाँ रहने दो। क्यों? कहा पूरा जीवन जो काम मैं नहीं कर पाया, एकाग्रता नहीं हुई, वो यहाँ 3 दिन में हो गया है। अगर मैं यहाँ 6 मास रहूंगा तो मुझे वो सब मिल जाएगा जिसके लिए मैंने संन्यास किया है। तो हमारे पास संगठन का बल है, हम व्यर्थ से अपने को मुक्त करेंगे। इसके साथ साथ दूसरी बात जो माया की कही बाबा ने, कौन सी? मैं राइट हूँ। इस चीज को जरा ध्यान पूर्वक देखेंगे, कहीं कहीं संगठनों में टकराव का और अपने अंदर टेंशन का ये बहुत बड़ा कारण है, मैं राइट हूँ। घर घर में झगड़े इसी से हैं। सास बहू का क्यों झगड़ा है माता बताओ? सास सोच रही मैं राइट, बहू सोचती है मैं राइट। दोनों भी राइट हो सकते हैं और दोनों गलत भी हो सकते हैं। दोनों राइट होंगे तो झगड़ा नहीं होगा, लेकिन दोनों ही झुकने को तैयार नहीं होते ना। कौन झुके, कौन अपने को गलत समझे। कभी कभी तो लोगों में ये भी देखने में आता है कि झूठ बोल दिया लेकिन अब बात आगे बढ़ गई, अब पीछे नहीं हटना है, अब स्वीकार नहीं करना कि हमने झूठ बोल दिया है, हम सत्य नहीं है, अब तो डटे रहना है मैदान में। असत्य का हथियार लेके ही कुछ लोग डटे हुए, मेरे को बताते हैं कैसा हो गया भाई, लेकिन अब पीछे हम हटना नहीं चाहते, पीछे हटेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके पीछे है मनुष्य का अहम, मैं राइट हूँ। इसके पीछे है मनुष्य का अहम। अरे भाई यहाँ रिकॉर्डिंग की जा रहे हो सभी, तो हम सभी किसी न किसी व्यर्थ को कम करेंगे। और मैं राइट हूँ इस पे जरा ध्यान देंगे, ये नहीं कि हम गलत ही होंगे सब जगह, हम राइट भी हो सकते हैं, पर अपनी सत्यता को सरलता के साथ आगे रखना और अपनी सत्यता की शक्ति में स्थिर रहना, अपने राइट होने को जिद न बना लेना, हट न बना लेना, इसकी आवश्यकता है। सरल चित्त यदि हम होते हैं तो हम राइट हैं इस बात को दूसरे लोग सहज स्वीकार कर लेते हैं। हम एक स्वमान रखेंगे इस बार, 2 स्वमान। अर्जुन भाई मैं बाप समान हूँ, इस सीजन का हम ये मुख्य स्वमान लेते हैं इस बार, इसको रिपीट करते रहेंगे। हम स्वयं को स्वीकार कराएंगे मैं राइट हूँ। नीचे बैठ जाएंगी बहन जी प्रभा में? हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, दिक्कत होती है ना। हम इसको स्वीकार करेंगे मैं बाप समान हूँ। कठिन काम है ये स्वीकार करना, क्योंकि हम बाप समान नहीं हैं। लेकिन अगर हमें बाप समान बनना है तो हम इसको स्वीकार करें और एक प्रयोग करेंगे। अगर हम स्वीकार करते हैं मैं बाप समान हूँ तो परिणाम क्या होते हैं, और इसको इस तरह चिंतन में लाएंगे मैं बाप समान हूँ तो मुझे कैसा होना चाहिए। आप ब्रह्मा बाबा की मनोस्थिति पे ध्यान दें। ब्रह्मा को शुरू में बाबा ने बता दिया, अब से तुम ब्रह्मा, मुझे तुम्हारे द्वारा काम करना है। तो बाबा ने सोचा होगा ना, मैं ब्रह्मा हूँ, प्रजापिता, सबका अलौकिक पिता, मुझे कैसा होना चाहिए, सारा संसार अब मुझे फॉलो करेगा तो मुझे कैसा होना चाहिए। तो चिंतन ने उनमें वो सब कुछ भर दिया। देखो वो भी तो मनुष्य थे ना, ये तो नहीं ना शिव बाबा ने उन्हें पहले ही सब कुछ दे दिया था, को साथ किया गया ना श्री कृष्ण वाली मुरली में 25 तारीख को। यही आत्मा है जिसने सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है। तो हमारा अपना चिंतन हमें महान बनाता है। बहुत ध्यान देंगे सभी, मैं बाप समान हूँ तो मुझे कैसा सोचना चाहिए, मुझे कैसे बोलना चाहिए, क्या क्या हो, मुझे निरंकारी नम्र बनकर रहना चाहिए, क्या क्या हो मेरे अंदर, मैं बाप समान हूँ। इसमें बहुत अच्छा विजन हम योग का भी बनाएंगे। संकल्प करें, मन से देखें ऊपर को बाबा, इस संसार को ऊपर बैठकर कैसे सकार देता होगा, देता है या नहीं, रोज रोज देता है। उसको अपने बच्चों को भी सकार देनी होती है रोज। बाबा ने अभी मुरली में कहा था, जो तुम्हारे संपर्क में आने वाली आत्माएं हैं, रोज सवेरे क्या करो, एक बार उन पे दृष्टि डालो, अर्थात उन्हें प्रकाश दो। तो बाबा का कनेक्शन किससे है, सारे संसार से। तो उसे तो रोज ही, उसके लिए तो सारा समय ही अमृत वेला है ना। 130 देशों में अगर उसके बच्चे हैं तो 24 घंटे अमृत वेला होता है उसके लिए, कहीं कभी कहीं अमृत वेला, कभी कहीं अमृत वेला। तो उसको तो सबको दृष्टि देते ही रहना है, ठीक बात है ना। हम जरा ये विजन बनाएं कि बाप दादा दोनों या शिव बाबा कैसे ऊपर बैठ के सारे संसार को सकार देते हैं, उनकी किरणें चारों ओर फैलती रहती हैं, नीचे जिधर वो देखते हैं उधर उनके मस्तक से नैनों से किरणें पहुंचती हैं। हम भी ऐसा ही योग करेंगे। ये योग की ऊंची स्थितियां हैं, ये वही सीख सकते हैं जिन्होंने लंबे समय योग पर ध्यान दिया है। तो मैं बाप समान हूँ और उसके साथ मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, दोनों समान हम लेकर चलेंगे। सकाश देने की सेवा चालू रखेंगे, ज्यादा नहीं, सवेरे शाम 10-10 मिनट। अलग अलग विजन बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा ये अभ्यास कर रहे हैं हमारे इस ग्रुप में। एक विजन बनाएंगे, मैं एक ऊंची स्टेज पर हूँ। थीम बनाए, ऊंची स्टेज बन गई है मेरे लिए, उसके ऊपर मैं हूँ जहाँ से सारा संसार दिखता है मुझे, वहां बैठ कर प्रकाश देंगे, बहुत आनंद आएगा। ये 10 मिनट का योग मोस्ट पावरफुल हो जाएगा, आत्मा में बल भरने वाला हो जाएगा। अब हम आ जाए योग, सब संकल्प करेंगे, हमें अपने व्यर्थ की स्पीड को कम करना है। सभी पहले संकल्प करें सच्चे दिल से, जिस तरह के भी संकल्प मुझे चलते हैं, कम से कम 25 प्रकार हो सकते हैं व्यर्थ संकल्पों के, हम उनमें से 10 अपने लिए चुन लेंगे। देखो कहाँ कहाँ व्यर्थ संकल्प चलते हैं सब जानते हैं, उसको केवल उसे लिखेंगे। एक माँ को संकल्प चलता है अपने बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं चलता, अपने सारे संकल्प शांत, बच्चों की चिंताओं के संकल्प। कभी मनुष्य के सामने कोई समस्या है तो उसे संकल्प चलते हैं उसके बहुत। कभी कोई भय की बातें सामने हैं उसके संकल्प चलते हैं बहुत। किसी ने अपमान कर दिया उसके संकल्प, किसी के अंदर इम्प्योरिटी के बहुत संकल्प, किसी के कारण अपमान की फीलिंग के बहुत संकल्प, किसी में फीलिंग बहुत आती है, छोटी छोटी बातों में फीलिंग, काम कर रहे हैं किसी ने कुछ कह दिया कि ये काम ठीक नहीं किया, बस गए काम से सारा दिन गया, सोच ही रहे हैं सारा दिन और सब बातें गुस्सा सेवा पूरी हो गई वही याद है सारा दिन। ऐसे भिन्न भिन्न संकल्प, किसी से अपनी गलती हो गई कोई तो व्यर्थ संकल्प बहुत, किसी को जिम्मेदारियों के कारण व्यर्थ संकल्प बहुत, किसी का योग नहीं लगता, किसी को अनुमान के कारण, किसी को परचिंतन के कारण, एक लिस्ट बनाएंगे स्वयं को देखकर मुझे कहां कहां ज्यादा संकल्प चलते, 10 बातें कम से कम हर एक की हो सकती हैं, पावरफुल जिनसे हम अपने को बचाना भी चाहते हैं पर जिनसे हमें बचना है अवश्य। एक चीज पर इन सब के लिए हम विशेष ध्यान देंगे जो प्रसिद्ध है बाबा के पास हम सबके पास, बातों में नहीं रहना है। यह संकल्पों का एक मुख्य कारण बातों में रहना, किसने क्या किया, कहाँ क्या हो रहा है, कईयों को तो सारे संकल्प की गई माता जी आई है, इनको जरा कोई बहन जो नीचे बैठ सके आगे जगह दे दो, आ जाओ, नहीं बस बैठ जाएंगे आप आगे आ जाओ। किसी किसी को बहुत समाचारों की रुचि होती है, ये पता होता है सारे संकल्प में कहाँ क्या हो रहा है, ये जानना आवश्यक है हमारे लिए या नहीं। हम जरा अपने से बात करें, हम उन्हीं बातों में रहें जो हमारे लिए आवश्यक हैं। जैसे हम सब अपनी स्टूडेंट लाइफ को याद कर लें, जो अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे तो स्टडी के अलावा और चीजों में नहीं जाते थे, जो जाते हैं वो फिर सचाते हैं। जो अच्छे स्टूडेंट रहे हैं हम में से वो जानते होंगे ये और चीजों में जाते ही नहीं थे, है ना, ऐसे अनुभव सबको होंगे। विशेष रूप से जब एग्जाम के दिन होते हैं तब तो सभी का यही होता है, किसको हायर एजुकेशन में अच्छे कंपटीशन देने हैं, कितना टेंशन रहता है। मैं फिर आपको एक बात सुनाऊं जो पहले भी सुनाई है, अभी दो गुड़गांव की बहन में से मिलने आई आईटी वाली, दोनों फ्री हैं, कन्याएं हैं, दृढ़ निश्चय किया हुआ शादी नहीं है, माँ बाप ने भी स्वीकार किया, इंजीनियर हैं दोनों गुड़गांव के। मेरे से बात करने आई, मैंने पूछा ऑफिस का टाइम, सवेरे 8:30 बजे जाना, रात को 11 बजे आना, फिर अपना भोजन भी बना, अपना काम भी तो कम थोड़ा ही होता है मनुष्य को, हम सब जानते हैं ना, एक कमरा भी होगा उसे भी संभालना पड़ेगा, अपने कपड़े भी संभालने पड़ेंगे, शरीर को भी तो संभालना है, तो डेफिनेटली सवेरे तो नहीं उठ पाएंगे, काम थोड़े परेशान रहते हैं, अकेले भी हैं। मैंने भी उनसे पूछा कितने परिवार को संभालना है, हंसने लगी, किसी को भी तो नहीं संभालना, पर अपने को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। उनसे तो बात हुई, मैंने पूछा कितनी सैलरी मिलती है, तनख्वाह कितनी मिलती है, अच्छी मिलती है, वो तो 50,000 मिलती है दोनों को, 50-50, ये तो अच्छा है। लेकिन मैं सोचने लगा, मैंने उन्हें भी कहा, हंसी में कहा, क्या 16 घंटा समय दे रहे हैं नौकरी में, अगर हम रजाई पाने के लिए 16 घंटा रोज दे दें तो कमाल हो जाए। मैं क्या, मुझे तो आपसे प्रेरणा मिल रही है, मिलती है मुझे प्रेरणा। मैंने केवल उनको कहा नहीं, मैंने सोचा, मैं हमेशा सोचता स्टूडेंट्स मेरे सामने आते हैं बहुत मेहनत, देखो लाइफ ही नहीं रहा कुछ, 50,000 तो मिल रहे हैं, कहा सारा दिन टेंशन ही टेंशन रहती है कार्यों में, टीम के साथ काम करना है, बातें भी होती रहती है, सोचो सवेरे 8 बजे से 11, जरूर 12 बजे सो के 6 सात बजे साढ़े छह से सात तक सोएंगे, जल्दी उठ के भागेंगे। लाइफ कैसी होती है, मैंने उनको ध्यान दिलाया, अब जल्दी वो समय आएगा आप सबको भी ध्यान हो। संसार से इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों फेल हो जाएंगे, तभी संसार का क्या हाल होगा। करोड़ों करोड़ों लोगों को नौकरी मिली हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी में, सोचो तब क्या हाल होगा, काम क्या आएगा हमें। नीचे से निकल के आगे आ जाओ, वो कह रहे हैं। चलो क्या काम आएगा हमें, बोलो क्या काम आएगा। मैं वो बात आपको अंडरलाइन कराता हूं बार बार, अपने सहित न पैसा काम आएगा, न मनुष्य काम आएंगे, न साधन काम आएंगे, काम आएगी श्रेष्ठ स्थिति, किए हुए पुण्य, जमा किए हुए ईश्वरीय खजाने बाबा, इसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा। आज की एक घटना सुनाओ। एक बहन, उसके घर के आगे सांप आ गया बहुत बड़ा। कैसे आ गया, उसने गीत बजा हुआ था जोर से, शिव आपदा हरण, सुना है ना ये। उस ट्यून से अट्रैक्ट होके एक भयानक सांप उसके गेट पर आ गया। जाली का दरवाजा बंद था, कुंडा भी लगा था, लेकिन उसे सांप दिख रहा था। सांप काला, 7 फुट का, उसके ऊपर गोल्डन पट्टी। मैंने कहा ऐसा सांप तो हमने भी नहीं देखा। फना उठा रहा और जाली को मार रहा, उधर देख रहा जिधर से आवाज आ रही। गेट के पास ही गीत बज रहा था, शिव आपदा हरण, वही ट्यून बजती है ना। वो डर गई, बहुत बहुत डर गई। डर गई तो किचन में फोन किया, मुझे किया, रामू है, रुपेश है, एक उपेंद्र भाई, हम सब किचन में, किचन की आवाज में फोन सुने नहीं, बहुत डर गई। जब हमने फोन, हमारा फोन आया, सुना हमने, तो कहा मैं बहुत डर गई हूँ, सांप घर से बाहर नहीं आ सकती। हम गए वहां, तो मैंने उससे पूछा, हमें याद करने के बजाय अगर बाबा को याद करती तो उसने बताया कि जब कहीं फोन नहीं लगा, हाथ कांप रहा फोन से भी, तो सांप बहुत भयानक था। हालांकि वो अंदर नहीं आ सकता था, पर डर का, जैसे ही मैंने बाबा को याद किया बाबा, और सांप चल दिया। गीत चेंज हो गया था, तब तक आपदा हरण वाला, आपदा हरी गई चेंज होते ही, और दूसरा गीत बजा और गीत चेंज होते ही सांप चल दिया, उसी समय उसने बाबा को याद किया। तो उसको बहुत अच्छा रियलाइजेशन हुआ कि आज मुझे एक सांप तो आया, मैं डरी भी, लेकिन एक नई चीज मिल गई कि परिस्थितियों में पहला अटेंशन ऊपर, फिर बाकी को याद करना है बाद में, पहला जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाकी को याद करने की, तो पर मान लो पढ़ भी जाए तो बाद में। तो ये बहुत अच्छी चीज हमें ध्यान रखनी है, बाबा की ओ काम आएगी स्थिति। अब ये लंबे काल का अभ्यास चाहिए ना कि बाबा की ओर ध्यान जाए। लंबे काल का अभ्यास नहीं होगा तो ये परिस्थिति हमें कहीं डर पैदा करेंगी, कहीं सब कुछ भुला देंगी और हम अकेले हो जाएंगे। तो हम याद रखेंगे, इसलिए व्यर्थ से स्वयं को मुक्त। अब कुछ पॉइंट निकाल लें जिनके आधार से हम स्वयं को मुक्त करेंगे। सबसे अच्छी धारणा, सबसे टॉप की धारणा, हम ऊपर से चलते हैं, छोटी बात नहीं करेंगे। संसार को साक्षी होकर देखना, तो बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं वो यही करेंगे। सबसे बुद्धिमान वो जो अपने चित्त को शांत रखे, बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान देंगे। अभी अभी एक भाई मेरे साथ ऊपर से आया, उसको पता लगा मैं जा रहा हूँ, वो भी चल दिया, अमेरिका का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंजीनियर है, बहुत तेज तराक है, बुद्धि बहुत तेज है। तो रास्ते में से बात कर रहा, मुझे देख के आपको पता लगता है मेरे में क्या कमी है, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा ये काम मेरा है तो नहीं भाई, बस क्योंकि तुम मेरे पास आते रहते हो तो मैं बता देता हूँ, तुम बहुत बुद्धिमान हो ना। उसने अपना प्रश्न किया कि मैं बाबा के पास आ रहा हूँ बहुत साल से, साल में दो बार आता हूँ, लेकिन मुझे अनुभव अच्छे नहीं होते। यहाँ से उसने पूछा कि मेरे में क्या कमी है बता सकते हो? मैंने कहा हमारे यहाँ भोली भोली माताएं हैं, गांव की आती हैं, बाबा आ गया, मस्त हो रही हैं, आओ भगवान आ गया, आनंदित हैं। क्यों? जहाँ विवेक शक्ति बहुत बढ़ी हुई होती है और भावना कम है वहाँ अनुभव नहीं होते। भगवान बुद्धिमानों को क्या कम करता है? किन्हें करता है? जो प्यार बहुत करते हैं उससे। बुद्धिमानों का प्यार कम होता ही है। उनको परेशानी हो गई होगी जब बाबा ने कहा सुन नहीं रहा जरा नजदीक आके बोलो, वो परेशान हो गए होंगे विदेशियों में से बहुत सारे कि भगवान नहीं सुन रहा, यहाँ नहीं सुन रहा तो ऊपर कहाँ सुनता होगा, इतनी दूर तो आवाज जाएगी नहीं, होंगे या नहीं? हुए, मेरे पास आ गए हैं कई विदेशी कि ये क्या है, बाबा ही है या कोई और बैठा है? क्या भगवान कान भी ठीक नहीं कर सकता? कई प्रश्न होते हैं मनुष्य में। तो मैंने इसको बताया, बुद्धि आपके पास बहुत है, अब बुद्धि का सदुपयोग करो। वो दुरुपयोग नहीं कर रहा है, सेवाओं में लगा हुआ। सबसे अच्छा बुद्धि का सदुपयोग है बुद्धि को शांत करना, मन को शांत करना। नहीं तो बुद्धिमान लोग परेशान है बहुत। तो साक्षी भाव, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई शिकायत नहीं, जो चल रहा है वो सब फर्स्ट क्लास चल रहा है। भगवान तो कुछ भी नहीं सोचता जिसका ये संसार है, वो तो कुछ भी नहीं सोचता जिसका ये यज्ञ है। हम क्यों परेशान हो रहे हैं, बातें करें अपने से। क्यों नहीं सोचता वो? क्योंकि नॉलेजफुल है, संपूर्ण ज्ञान है, जो कुछ हो रहा है वो परफेक्ट। हमें लग रहा है गड़बड़ हो रही है, उसे दिख रहा है संपूर्ण सत्य हो रहा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं। भगवान जिसका डायरेक्टर है, उस ड्रामा में गड़बड़ हो तो डायरेक्टर फेल हो जाएगा ना। हरगोविंद तो डायरेक्टर भी है ना इस ड्रामा का, बनाया तो उसने नहीं है, डायरेक्टर है। तो इसलिए चित्त को शांत करेंगे, अनुमान की आदत को ब्रेक लगाएं। इसके लिए थोड़ा अच्छा शक्तिशाली बनना पड़ता है, पर चिंतन और व्यर्थ बातों से खुद को मुक्त करें। एक लक्ष्य बना लें, हमें व्यर्थ को छोड़ना है, क्योंकि हम कितना भी ज्ञान योग करें अगर व्यर्थ चलता है तो सारी शक्ति नष्ट। इसलिए बहुत ब्राह्मण वही के वही है जहाँ आए थे ना, बिल्कुल वही है। रोज सवेरे उठ के अच्छा योग कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, एक घंटा भी अगर व्यर्थ में चला गया तो सारी शक्तियां रह जाती हैं। हम सब इस पर बहुत ध्यान देंगे। तो जिस जिस तरह का संकल्प चलता है उसके लिए स्वयं विचार करेंगे, कौन सी बाबा की बात हमें संकल्प बनाएगी। एक साक्षी भाव, दूसरी बड़ी बात समर्पण भाव, समस्याओं को भी समर्पित कर दें और समर्पित भाव से ही काम करें। बहुत बड़ी साधना है ये हमारी, छोटा नहीं। बहुत लोग कहते हैं बाबा को बोझ दिए, हुआ ही नहीं कुछ, सारी चिंताएं बाबा को दे दी थी, कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि समर्पण भाव को अभी समझा नहीं है। बहुत गहराई है इसमें, बहुत गहराई है। छोटा सा उदाहरण ले लें, हम एक जंगल में जा रहे हो जहाँ हमारे चारों ओर शेरों के आने का खतरा हो, लेकिन हमारे साथ चार स्टेन गन लिए हुए लोग चल रहे हो हमारी सुरक्षा में, बंदूक लिए हुए चार लोग, तो हमें डर लगेगा? ये भी समर्पणता है ना। हम अपने भय को, हमने अपने भय को उन चार लोगों को समर्पित कर दिया है ना। ये हैं, आ भी गया भालू तो डर की बात नहीं, ये है भगवान है हमारे साथ, वादा किया हुआ है मैं हूँ, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। तो बस बात यही है, हमें उस पर विश्वास नहीं है। चार बंदूकधारियों पे हमें विश्वास रहता है, उस पे नहीं रहता। इसलिए चिंता अर्पित करने के बाद भी चिंतित रहते हैं। तो दूसरी बात समर्पण भाव, और तीसरी बात निष्काम भाव। निष्काम सेवा कर रहे हैं, घरों में आप रह रहे हैं, किसी से कुछ चाहिए नहीं हमें, ये भी नहीं बच्चे हमें सम्मान दें, बड़े हमें प्यार करें, हमारे में जो अच्छाई है उनको कम से कम समझें तो सही। हम इतना अच्छा घर में काम करते हैं, सब कोई समझता ही नहीं हम भी बहुत अच्छा करते हैं। निष्काम कर्म करते चलो, रिटर्न में कुछ भी चाहिए नहीं, केवल कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है। हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम आगे बढ़ते ही जाएंगे, कोई उन्हें समझे या न समझे। फूल में खुशबू होती है, कोई कितना भी कहे नहीं है, खुशबू तो पहले भी ही। किसी के अंदर गुण हैं वो तो चमकेंगे ही, कोई मान्यता दे या न दे। अपने को मजबूत करेंगे तो हर तरह के व्यर्थ पर ध्यान देना है। चेक कर लें आप, ये तीन बातें बहुत सुंदर हैं, जो व्यर्थ के फोर्स को समाप्त करेंगे। और चौथी है इंप्योरिटी की, उसमें एक बहुत सुंदर संकल्प जो मेरे ख्याल में है वो ये है कि हम ऐसी भावना बना लें कि मुझे तो सबको प्योर वाइब्रेशंस देने हैं, अपनी प्योर इम्प्योरिटी स्वतः ही नष्ट होती जाएगी। और अपने पांच स्वरूपों का अभ्यास योग में बढ़ाएं सवेरे शाम, उससे हमारे सभी स्वरूपों में हमारी प्योरिटी है ना, देव स्वरूप, पूज्य स्वरूप, आत्मा, सब प्योर हैं, उनको याद करने से प्योरिटी बढ़ेगी। ऐसे प्लान के साथ सभी बाबा के आने तक एक बार और हम बीच में मिलेंगे। इसको अंडरलाइन करके आगे बढ़ाना है। व्यर्थ से मुक्त होने में हमें बहुत सुख मिलता है, स्वमान बीच में बहुत मदद करेंगे। एक एक व्यर्थ के लिए एक एक स्वमान भी हम निश्चित कर सकते हैं, लेकिन ये सब होमवर्क हर एक को खुद करना है। मैंने कुछ ही बातें बताई, और भी बहुत बातें हैं। चारों सब्जेक्ट का बैलेंस भी बाबा ने देखा है, वो एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर अगली बार चर्चा करेंगे। ओम शांति। अभी क्लास है इसलिए मैंने जल्दी पूरा किया। दो मिनट केवल भी। चलो मैं बात समान हूँ, जैसे बाबा से ऊपर सारे संसार में किरणें फैल रही हैं, वैसे ही मुझसे भी।